नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही हैं। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति सांप्रदाय से मुक्त धर्म की परिभाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने, नैतिक में जीवनचर्या सारी, कथनी करने की समानता में गतिशील चरण हो। संयम में जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अपना अटल सिंहनाद सारे जग में गरजेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममयी जीवन हो, संयममयी जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयम, साहस और संकल्प, भट्टी की शुरुआत में ये तीन बातें बताई थी। संयम, स्वयं पर नियंत्रण, संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प प्रण प्रतिज्ञा, और साहस अर्थात अज्ञात में छलांग, जिसके विषय में कुछ पता नहीं, टेरा इनकॉग्निटो, अज्ञात क्षेत्र, उस टेरा इनकॉग्निटो में छलांग अर्थात साहस। संपूर्ण अभय के साथ, अभय अर्थात भय का अभाव नहीं, संपूर्ण भय के साथ अज्ञात में छलांग अर्थात अभय, वह निर्भयता। संकल्प, साहस और संयम इस यात्रा के आधार स्तंभ है। नए संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, नई प्रतिज्ञा है, श्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। साहस और संयम, ये जीवन के श्रृंगार है। 16 जनवरी 2023 आज का सोमवार, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। चिंतन, स्वराज्य की कारोबार में सभी कर्मचारी लॉ और ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रहे हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी धोखा तो नहीं देते। योगाभ्यास, मैं आत्मा, राजा, मन, बुद्धि और संस्कारों सहित स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। स्वराज्य अधिकारी बन अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों की दरबार लगाए और एक एक कर्मचारी का हाल चाल पूछे। तो भट्टी के तीन आधार स्तंभ से तीसरा आधार स्तंभ संयम, उस आधार पर ये समान है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्व अर्थात स्वयं, राज्य अर्थात शासन, अधिकार राइट, स्वयं पर अधिकार, स्वयं पर शासन। एक व्यक्ति एक आश्रम में गया और वो कहने लगा कि मुझे इस आश्रम में रहना है, साधना करनी है। आश्रम बहुत भव्य है, बहुत बड़ा है और बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ के जो लोग हैं वो उसे कहते हैं, इस आश्रम में तुरंत एडमिशन नहीं मिलती है, इसके लिए इसकी जो छोटी ब्रांचेस है पहले वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ के जो गुरु है उनसे मिलना पड़ेगा, अगर वो अनुमति दे उसके बाद ही यहाँ पर नियुक्ति हो सकती है। वो छोटे आश्रम में जाता है, वहाँ के गुरु से मिलता है और कहता है कि मुझे इस आश्रम में रहना है। वो गुरु कहते हैं, इस आश्रम में रहने से पहले तुम्हें आत्म संयम सीखना होगा, सेल्फ रिस्ट्रेंट, और उसके लिए 3 साल यहां रहना पड़ेगा। और इन 3 सालों में जब जब कोई तुम्हारा अपमान करे, नो रिएक्शन, ये पहली कंडीशन। जब जब कोई तुम्हारा अपमान करेगा तब कोई प्रतिक्रिया नहीं। दूसरा नियम, जब कोई तुम्हें गाली दे तो तुम्हें उसे पैसे देने पड़ेंगे। अगर कोई अपमान करे तो सहन करना, चुपचाप रहना, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर कोई गाली दे तो खुद के पैसे उसे देने पड़ेंगे। 3 साल वो व्यक्ति वहां रहता है और आश्रम के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, परंतु पूर्ण मनोयोग से वो अपनी साधना करता है। 3 साल पूरे होते हैं, गुरु कहता है कि तुम उत्तीर्ण हुए, अब तुम बड़े आश्रम में जा सकते हो और मैं तुम्हें वो जो प्रण था, वो जो नियम था, उससे आज मुक्त करता हूं। और वो व्यक्ति बड़े आश्रम में पहुंचता है। वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति गेट पर ही बैठा हुआ है, चौकीदार, और जैसे ही ये कहता है कि मुझे अंदर जाना है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसे गालियां देना चालू करता है। ये व्यक्ति अंदर ही अंदर हंसने लगता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? वो कहता है, आज ही तो मैं फ्री हुआ हूं, पहली बार आज मुझे गालियों के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में। नहीं तो पिछले 3 सालों से जब भी गाली सुनता था तो मुझे क्या करने पड़ते थे? पैसे। आज मुझे फ्री में काम हो रहा है, मेरा मुफ्त। वो बूढ़ा व्यक्ति भी हंसता है और कहता है, अब तुम योग्य हो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, आत्म संयम की परीक्षा थी, आत्म नियंत्रण की परीक्षा थी, सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा थी, सेल्फ रिस्ट्रेंट की परीक्षा थी, और वो इतनी आसान नहीं। तो 2 नियम तो अच्छे हैं ना, दूसरों के लिए जेब भारी चाहिए। पर तो आज का सम्मान क्या है? मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। बाबा कहते हैं दरबार लगाओ। 8 बातें। पहला, देखना, सींग, आंखों पर नियंत्रण। दूसरा, सुनना, कानों पर नियंत्रण। तीसरा, बोलना, स्पीकिंग। चौथा, ईटिंग, खाना। पांचवा, स्पर्श, टचिंग, हाथ लगाना। छठवा, सातवा, आठवा, मन, बुद्धि, संस्कार। इन 8ों पर नियंत्रण, अर्थात स्वराज्य अधिकार, स्वयं पर नियंत्रण, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, स्थूल कर्मेंद्रिया, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय। सबसे पहला, देखना। देखने में क्या दोष है? देह देखना, रूप देखना, अवगुणों को देखना, निगेटिविटी को देखना, व्यर्थ को देखना, ये स्वभाव बन गया है। और कोई भी स्वभाव यदि पलटना है, बदलना है, तो पहली स्टेप है, उसे स्वीकार करो जो स्वभाव बन गया है। अगर कोई कहता है ये मेरा व्यसन है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही पीता हूँ या ऐसे ही करता हूँ कभी कभी, तो वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप, प्रथम चरण है, पहले स्वीकार करो आंखों की क्या आदत बन गई है, व्यर्थ देखने की, नकारात्मकता देखने की, अवगुण देखने की, शरीर देखने की। स्वभाव सहज स्वाभाविक रूप से ध्यान शरीर की ओर जाता है। भारतीय संस्कृति में या फिर अन्य संस्कृतियों में भी काम विकार को किस रूप में दिखाया है? वेस्टर्न कल्चर, क्यूपिड, क्यूपिड के पास क्या है? बाण। और भारत में कामदेव, कामदेव को कैसे दिखाया है? उसके पास क्या है? धनुष और बाण। उस बाण में उसके पास 5 बाण होते हैं और उस बाणों से त्रिलोक में कोई नहीं है जो बच सके, यहां तक कि भक्ति मार्ग में दिखाए ना, महादेव तपस्या कर रहे, सब कुछ करता है वो कामदेव, देवता उसे भेजते हैं कि इनकी तपस्या भंग करो, पर जब विफल हो जाता है तो अंत में ये 5 बाण मारता है, तब योगेश्वर महादेव की भी तपस्या भंग हो जाती है। कौन से बाण है वो? पहला है मोहना, देह को देखते ही क्या हो जाता है? मन मोहित हो जाता है, इन्फैटुएशन। शरीर की सच्चाई पता है, शरीर का सब कुछ पता है, फिर भी ओल्ड वायरिंग है, अब रीवायरिंग करनी पड़ेगी, मेंटल रीप्रोग्रामिंग। ये पहला बाण है और बहुत ही घातक बाण है। व्यक्ति मोहित हो जाता है रूप को देखकर, सौंदर्य को देखकर, दूसरा स्तंभना, स्तंभित हो जाता है। और ये सारी अवस्थाओं को वर्तमान में वो प्रेम कहता है या प्यार कहता है या मोहब्बत कहता है, लव कहता है। स्तंभित, स्तंभित अर्थात स्टुपिफाइड, स्तंभित अर्थात, स्तंभित अर्थात हैरान तो नहीं, पकड़ लेता है, जकड़ जाता है एकदम, अब उसके सिवा उसको कुछ सूझता नहीं, स्टक, स्टुपिफाइड, स्टोन्ड, जैसे पत्थर सा बन जाता है, बस खो जाता है। उसी व्यक्ति की याद, उसका ही चिंतन, उसके ही रूप का चिंतन, उसकी ही बातों का चिंतन, उसकी हर चीज अच्छी लगने लगती है, हर चीज, वो जो भी कहे वही अच्छा लगता है। स्तंभित, बुत, ये दूसरा बाण है काम का, कामदेव का। तीसरा उन्माद, नशा। तीसरा, ये 5 बाण है कामदेव के, उन्माद अर्थात नशा, नशा चढ़ जाता है, खुमारी। वर्तमान में लोग इसे पॉजिटिव मानते हैं, अच्छा है, प्रेम हो गया है, चौथा शोषण या फिर इंटेंस अट्रैक्शन इमेसिएशन। शोषण अर्थात इतना गहरा अटैचमेंट हो जाता है, बहुत गहरा, कि अब वो उससे छूट ही नहीं पाता है, जैसे मकड़ी के जाल में मकड़ी फंस गई, उसी तरह। और ये सारे आंखों से प्रवेश करते हैं, शोषण, इंटेंस अट्रैक्शन, बहुत तीव्र गति का आकर्षण और लास्ट तपन अर्थात आग, क्या हो जाता है, आग लगती है। ये चार पांच बाण है और सारों का प्रवेश द्वार क्या है, आंखें। इसलिए आंखों को नई ट्रेनिंग देनी है, कहां देखने की, गर्दन के ऊपर, कहां देखने की, भ्रुकुटी। नहीं तो ये कब आक्रमण करे पांच बाण बता नहीं सकते। और जब व्यक्ति इसके प्रभाव में होता है तब उसकी विवेक शक्ति बुद्धि नष्ट हो जाती है, वही व्यक्ति में सब कुछ दिखाई देने लगता है, वही व्यक्ति जीवन का आकर्षण हो जाता है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, उसका अपमान मेरा अपमान, उसकी बीमारी मेरी बीमारी, उसका दर्द मेरा दर्द, कोई कुछ नहीं कर सकता उसको, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है और मारने के लिए भी। इतने शक्तिशाली वायु फ्लावरी एरोज ऑफ क्यूपिड कोई नहीं बच सकता, ऐसा कहते हैं। तो आंखों को ट्रेन करना है, सबसे पहली ट्रेनिंग क्या देखने की, शरीर नहीं, शरीर दिखे तो शरीर का चिंतन करना है, कितना अनित्य है ये, क्या है इसमें, कितना क्षण भंगुर। और आकर्षण वास्तव में किसी और के देह का है ही नहीं, वास्तव में आकर्षण जो है वो हमारे ही अंदर जो सुखित संवेदना उत्पन्न होती है उसका है। जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, बीड़ी का थोड़ी आकर्षण है, सिगरेट का आकर्षण नहीं है, सिगरेट का व्यसन है ही नहीं, दारू का व्यसन है ही नहीं, वो पीने के बाद तन बदन में जो सुखद संवेदना जागती है, शरीर में पूरे जो सुख का अनुभव होता है, उसके प्रति एडिक्शन है। एडिक्शन उस वस्तु का है ही नहीं, वो लेते ही सुखद संवेदना जाती है। आकर्षण किसी व्यक्ति के शरीर का काम विकार का है ही नहीं, दूसरे का कोई संबंध ही नहीं है, हाँ उसके संपर्क में आने से जो संवेदना जागती है, ये इंद्रिय ये विषय विषय इंद्रियों से टकराते हैं, झनकार होती है संवेदना सेंसेशन, सुखद हो तो उसके प्रति गहरी आसक्ति हो जाती है, दुखद हो तो द्वेष होता है। कड़वी चीज खा ली उसके बाद अगली बार खाने की इच्छा होती है क्या, नहीं, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया है। कोई खाई चीज और बहुत अच्छी लगी, अगली बार वही चाहिए, आकर्षण। उसी तरह स्पर्श, उसी तरह व्यक्ति के शब्द, उसी तरह व्यक्ति का स्वभाव, बहुत पसंद आ गया, अब वही व्यक्ति चाहिए, वही अच्छा लगता है। किसी ने तारीफ की, बार बार उसी को इर्द गिर्द घूमने की इच्छा होती है, और जिसने नफरत की, विरोध में कहा कुछ, उससे दूर भागते, वो इधर से तो हम इधर से। गीता में श्लोक है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदा। आगमा पायिनो नित्य स्ता स्थितक्षक स्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्शस्तु अर्थात इंद्रियों और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख और दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। कैसा क्षणभंगुर, शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे ठंडी और गर्मी कितनी अनित्य है, अभी अभी ठंडी अभी अभी गर्मी, अभी ये अभी वो, आने जाने के समान है। आगम मा पाइनो नित्य, कितना अनित्य है ये, आती है चली जाती है, अभी अभी ठंडी है फिर गर्मी है, फिर गर्मी फिर ठंडी, उसी तरह इंद्रिय और विषय, इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने के बाद जो सुख दुख उत्पन्न होता है वो भी अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी, तू क्या कर, मनुष्यों की चाहिए कि वो विचलित हुए बिना उसको सहन करना सीखे। तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा सहन करे, उनके अधीन न हो जाए। तो आंखों पर नियंत्रण अर्थात बाबा कहते दरबार लगाओ, पूछो आंखों से, बात करो आंखों से, क्या देख रहे हो, शरीर तो नहीं देख रहे। दूसरा है देखने में व्यर्थ, समर्थ छोड़कर क्या देखना, व्यर्थ अवगुण दोष। और जब बुद्धि अवगुणों से भर जाती है, दोषों से भर जाती है, तो फिर जो सुंदर भावनाएं हैं वो उत्पन्न होना बंद हो जाती है। एक बहुत अमीर स्त्री एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गई, एक संगीत संध्या, और वो बहुत अमीर है इसलिए उसने सीट भी कहाँ ली, एकदम सामने जो वीआईपी है वहाँ पर सीट ली, बहुत महंगी सीट, एकदम सामने जहाँ सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। और उसे घमंड था अपनी अमीरी पर। और अभी प्रोग्राम चालू ही होने वाला था तो उसकी नज़र पड़ी वहीं पर बैठे एक दूसरी स्त्री पर। उसको याद आया कि ये कौन है, उसके घर में जो उसकी एक्स मेड थी काम वाली पुरानी, उसकी ये बेटी थी। उसको लगा वो काम वाली और उसकी ये बेटी और कहाँ बैठी है, यहाँ पर वीआईपी सेक्शन में। और कपड़े देखो उसके कैसे, प्रोग्राम चालू हो जाता है परंतु बार बार इसका ध्यान कहाँ जाता है, ये जो पुरानी काम वाली थी उसकी ये बेटी है और ये यहाँ आके बैठी है, वो भी हमारी जो रिजर्व क्लास है, वीआईपी सेक्शन है वहां पर। और अंदर ही अंदर घृणा आती है, पता नहीं और क्या क्या सोच रही होगी, इनकी औकात नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। और तभी तालियों की गड़गड़ाहट होती, प्रोग्राम पूरा हो गया, सारे खड़े हो जाते, राष्ट्रीय गान जन गण मन। आई थी वो प्रोग्राम देखने परंतु किसने खींच लिया, वो प्रोग्राम कब चालू हुआ उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि ध्यान किधर था, उस स्त्री की तरफ। आंखें क्या देख रही है, आंखों को नई ट्रेनिंग देनी है, कौन सी, गुण देखने की नई ट्रेनिंग देनी है, क्या देखने की, समर्थ देखने की, विशेषता देखने की। इसके लिए रोज जो डायरी लिखते हैं, अगर दिन में लगा कि किसी के प्रति नफरत का भाव जागा है तो उसके अवगुणों गुणों का चिंतन करना रात को सोने से पहले, और 5 गुण लिखना कि माना इसमें सब गलत है परंतु कुछ तो होगा, कुछ में एक तो ये है, ये बाबा का बच्चा बन गया, ये यूनिवर्सल है, पवित्रता को यथा शक्ति धारण तो कर ही लिया है, सेवा कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, यहां तक तो पहुंच गया, यही उसके 3-4 तो गुण तो यही हो जाएंगे, संसार का त्याग किया, यहां सेवा में आया है, चलो कोई इस ज्ञान में न भी चलता हो फिर भी उसमें कुछ तो हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ना हो किसी में। हो सकता है कि वो उसकी सेवा बहुत अच्छे से करता है, बाकी अवगुण बहुत है, 99 अवगुण है, पर एक गुण है कि अपने डिपार्टमेंट की सेवा बहुत अच्छे से करता है, उसी एक गुण के लिए उसे यहां रखा गया है। आंखों को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, गुण देखने की, विशेषता देखने की। जब वो पॉजिटिविटी में रहता है तब उसे कंट्रोल आराम से किया जा सकता है मन को, जब वो निगेटिविटी में है कंट्रोल बहुत मुश्किल है, और जब विकारों में है तो असंभव, क्योंकि गति तेज हो जाती है। एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर जा रहा है, इतना घोड़ा इतना तेज भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा है, राह पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूछता है उससे, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता, मुझे क्या पता, घोड़े को पूछो, व्हाट आई नो, क्योंकि उसका वश ही नहीं है। घोड़ा जहां ले जा रहा है वहां वो जा रहा है, मुझे क्या पता मैं कहां जा रहा हूं, घोड़े से पूछो। तो आंखों को आदत है ये सब देखने की, शरीर देखने की, अवगुण देखने की, व्यर्थ देखने की, दोष देखने की, इस आदत को तोड़ना है। ये वैसी ही आदत है जैसी स्थूल आदत है, ये सूक्ष्म है। तो सबसे पहला अधिकार स्वराज्य अधिकारी अर्थात आंखें नियंत्रण में, दूसरा है सुनना, सुनने में क्या, कानों पर नियंत्रण। हजारों बातें हैं संसार में, व्यर्थ है, निगेटिव है, यही ज्यादा है। पूरा मीडिया देखो तो उसमें कितनी निगेटिविटी रहती है। कानों को भी आदत है क्या सुनने की, निगेटिविटी, इंटरेस्टिंग बातें हमेशा निगेटिव होती है या व्यर्थ होती है। जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग उतने उसमें व्यर्थ, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जितना समाचार दिलचस्प उतना ही वो व्यर्थ होगा। न्यू ईयर पर कभी मुरली चली थी? तो आंखों कानों को क्या सुनने की आदत है, व्यर्थ निगेटिव। और कानों को क्या सुनने की आदत है, कामुकता, सेंशुअलिटी, सेंशुअल बातें, ऐसे गीत जिसमें उत्तेजना है, वल्गैरिटी, जन जन के संस्कार है उसके। आंख आकर्षित होती है, कान आकर्षित होते हैं। इन कानों को ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग देनी है। कौन सी कानों को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, क्या सुनने की ट्रेनिंग देनी है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, रामायण में है भगवान को कौन से भक्त प्रिय है, वो भक्त प्रिय है जिनके कान निरंतर आतुर होते हैं उसकी कथा सुनने के लिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी प्रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम ने शबरी के आश्रम में नवदा भक्ति का गायन किया है। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, ये पहली भगति है। दूसरी भगति मम कथा प्रीत मम कथा प्रसंगा, मेरी जो कहानी है उससे प्रीत, मेरी जो बातें हैं, मेरी जो वाणी है उससे जिसको प्रीत है। तो कानों को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, ज्ञान सुनने की। कानों को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, ज्ञान की बातों में रमन करने की। बड़े कान हो जाए, भक्ति मार्ग में शिव का जो वाहन है नंदी, उसके कान कैसे है, नंदी बैल है, कान कैसे है उसके, बड़े बड़े कान है। क्यों खुले हुए हैं और क्यों बड़े हैं, क्योंकि निरंतर वो शिव शिव में मगन है, शिव गान कर रहा है, शिव की वाणी सुन रहा है। तो जहां जहां से भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, आतुर हो कान उसे सुनने के लिए, उसकी जो कहानी है वो अमृत है। तव कथा अमृतम, अमृत की तरह है वो। और हमारे कानों में क्या भरा है, कचरा, कितने जन्म का, कितने जन्मों का कचरा भरा है उसमें। तो उसको वहां से निकालना है तो शुद्ध जल डालना पड़ेगा, और ज्ञान है शुद्ध जल। डालते जाओ, कब तक डालना है ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि कान जो है वो दर्पण की तरह है। दर्पण को कितनी बार साफ करना होता है, सुबह साफ करो, शाम को साफ करो, क्योंकि धूल जम जाती है, विचार धूल है। 2-3 बार साफ सफाई करनी पड़ेगी दिन भर में, क्योंकि कानों में कुछ ना कुछ पड़ते ही रहता है कचरा, इधर से उधर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ आके सुनाता है। अगर आपने एक बार सुन लिया तो उसको अगली बार वो तुमको ही ढूंढेगा। अच्छा भी लगता है। जब ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो हम क्या चर्चा करते हैं? व्यर्थ, निगेटिव, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, क्यों है। माइंड योर ओन बिजनेस। तो कानों को ये ट्रेनिंग देनी है। कान क्या सुनने के लिए आतुर हो? केवल ईश्वरीय ज्ञान। और जितना और ये भी एक ट्रेनिंग है सुनना, लिसनिंग। अभी यहां बैठे केवल जब सुन रहे तो ओनली सुनना है, केवल सुनना बन जाना, वर्तमान में जीना, अर्थात जो काम कर रहे वो होश से करना। ऐसा सुनो, ऐसा सुनो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बुद्धि तुम्हारी मुरली में छप जाए, बुद्धि में मुरली, बुद्धि में छप जाए, छपाई हो जाए, छपाई ये शब्द है बाबा के। इतनी एकाग्रता से सुनो, एक पैटर्न क्रिएट करो। उस दिन भी कहा, इन क्लासेस में जो भी कहानियां, जो भी बातें बताई जाएगी, ये कल भी कर रहा था, ये एक अच्छा इनके पास सॉफ्टवेयर है इसमें एक 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 डालते जा रहे, 8 बातें और फिर जो उदाहरण वगैरह वगैरह, तो कुछ ना कुछ करते रहना है, क्रिएटिव याद रखना है चीजों को, जो ज्ञान की बातें सुन रहे हैं उनको। तो दूसरा, कान, कान को क्या करना है? थोड़ा बड़ा, जहां जहां से ज्ञान मिल जाए। और कानों को और एक ट्रेनिंग देनी है, प्रकृति की आवाजें सुनना, प्रकृति के सानिध्य में जाना, एकांत में बैठना, वो सारी आवाजें सुनो जो प्रकृति में आ रही है, ये भी एक ट्रेनिंग है, सूक्ष्म हो जाए। और सबसे बड़ी ट्रेनिंग है ईश्वरीय आवाज को सुनना, बाबा की आवाज को सुनना। प्रतिपल वो हमसे कुछ कह रहा है पर सुनाई नहीं देता है हमको, क्योंकि हम अपने विचारों में व्यस्त है, हमें सुनाई नहीं देता है हमसे क्या कह रहा है। वो बहुत आगे की स्टेज है, भक्तों की आवाज। हम अपने दुखों की आवाजों में डूबे हुए हैं, तो कैसे सुनेंगे? कान को नई ट्रेनिंग देनी है। कान आकर्षित होते हैं कहाँ? और विकारों की तरफ, विकारी गीत, विकारी साहित्य, विकारी शब्द, विकारी बोल, विकारी हंसी, विकारी हंसी मजाक, वो सब भी उसे आकर्षित करता है। और कब आकर्षित करता है? एक मुरली में बाबा ने कहा, एक एक इंद्रिय क्या है? मकड़ी का जाल। ये आंख जो है, एक दिन पूरा अमृत वेला योग केवल आंख पर करो कि आंख ने मुझे कहां कहां धोखा दिया, कैसे मैं आंखों के माध्यम से फंसा। एक दिन योग करो पूरा कानों पर, कान योग, आंख योग, ईयर योगा, आईज योगा, इन कानों से कब कब क्या क्या सुना, तब तब गड़बड़ हुई। जैसे कोई आके बताता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था, अब हम उसके बारे में बहुत अच्छी इमेज है हमारी, और अभी अभी फ्रेश न्यूज मिली है और विश्वसनीय सूत्रों द्वारा, पर डायरेक्ट नहीं सुना है, पर विश्वसनीय सूत्रों ने तुरंत आके सुना है कि तुम्हारे बारे में उसने ऐसा ऐसा, अभी ताजी खबर है, ऐसा कहा है। सारा कुछ चेंज, क्योंकि नेगेटिव न्यूज सुनने के बाद हमें प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई अवगुण सुनाए तो हम प्रूफ मांगते हैं, नेगेटिविटी सुनाए तो तुरंत हमारा विश्वास बैठ जाता है, ऐसा उसने कहा ही, मुझे पहले से ही लगता था कुछ तो है गड़बड़, बस आज क्लियर कर दिया तुमने। तो कान, एक पूरा योग कान पर करो कि पूरे जीवन में आज तक कानों ने कहां कहां धोखा दिया है मुझे, कब कब कौन कौन सी बात सुनी और हलचल हुई। या फिर और एक चीज, कान किसके लिए संवेदनशील है? दुख के लिए, दुखद न्यूज। जैसी दुख की न्यूज आई, क्या हो जाता है? दुखी हो जाते हैं, डूब जाती है आत्मा दुखों में। तो कान बहुत बड़ा साम्राज्य है, कान का एक पूरा साम्राज्य है, एक पूरा संसार है कानों का। तीसरा बोलना, मुख बोलना, एक है बोलना जो है सिल्वर, एक है मौन रहना वो है गोल्ड, और डायमंड कंट्रोल्ड स्पीच, संयमित वाणी अर्थात डायमंड। न बोलना बहुत आसान है, पूरा दिन मौन रख लो झंझट खत्म, परंतु ये हमेशा नहीं हो सकता, सस्टेनेबल नहीं है, दीर्घकालीन चलने वाला नहीं है। एक दिन ठीक है, दो दिन ठीक है। महात्मा गांधी हर सोमवार मौन रखते थे, मंडे मौन का दिन था, साइलेंस, वो भी बहुत अच्छी साधना है। दूसरा है सिल्वर, बोलना। कोई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई नहीं बोल पाते, जो भी है, परंतु बोलने में ऊर्जा तो जाती है, कितना भी कोई अच्छा बोले पर ऊर्जा तो जाती है। तो इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, बीच का मार्ग, मध्यम, मध्यम निकाय, वो है संयमित बोल, जब आवश्यक है तब बोलना। तो आज वापस काम दे रहे सबको, 21 प्रकार के बोल लिखना है, हमारे बोल कैसे हो, कैसे हो हमारे बोल, अभी नहीं बताना है, नहीं तो 100 पॉइंट निकल जाएंगी यहीं पर, और पावरफुल पॉइंट्स निकलनी। जैसे एक पॉइंट है, जब तुम बोलो तो आत्माएं बाबा की याद में खो जाए। कैसे बोले ये? जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। दूसरा, तुम्हारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो। ऐसी कितनी बातें लिखनी है आज? 21 बातें लिखनी है। बोल कैसे हो, तो बोलना। समान युक्त जो बोल है उन्हें नियंत्रित करना बहुत आसान है, परंतु जब निगेटिव होते हैं बोल तो उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्रोध, क्रोध का समावेश होता है उसमें, आवेश होता है, जोश होता है, रोब होता है, ये बोल। स्वराज्य अधिकारी अर्थात जिसका वाणी पर संयम हो। अवतार मेहर बाबा थे, 1924 में मौन व्रत धारण किया, अंत तक 1969 में शरीर छोड़ा। हर बार अनाउंस करते थे कि अभी मैं मौन तोड़ने वाला हूँ, और जिस दिन वो डेट आती थी एक्सटेंड कर देते थे, करते करते लास्ट तक उनका जो शिष्य था, ईरानी शायद, हाँ, उसने वो सब, वो उनकी भाषा समझता था और वो लिखता था। अवतार मेहर बाबा, मौन, मौनावतार। तो मौन में बहुत शक्ति है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो एक जगह पहुंचते हैं, टैपिस्ट मोनेस्ट्री, टैपिस्ट मोनेस्ट्री थी, एक आश्रम था वहां पर। वो देखते आश्रम में जितने लोग रहने वाले सभी मौन धारण किए हुए, कोई किससे बात नहीं करता, उन्हें आश्चर्य हुआ। वो वहां के मठाध्यक्ष से मिले और पूछा कि यहाँ के जो लोग हैं ये एक दूसरे से बातें क्यों नहीं करते। द इनमेट्स, आश्रमवासी, जो निवासी है आश्रम के अंदर रहने वाले, कोई भी बात नहीं करता है, सब इशारों से काम चलता है यहाँ पर। आश्रम के मठाध्यक्ष जो थे, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, ने कहा यह इस आश्रम का नियम है। और वैसे भी हम मनुष्यों को अभी तक समझ में कहाँ है यार, बोलना क्या और क्या नहीं बोलना। जब भी बोलते हैं तो गड़बड़ी होती है, कुछ भी बोलो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है। इसीलिए इस आश्रम का नियम है कि जब भी यहाँ कोई आएगा और उसको यहाँ निवासी बनना है और रहना है, सारा मौन वार्तालाप करना है। अगर कुछ बोलना है तो लिख के या थोड़ा सा इशारों से बस, बाकी कंप्लीट वाचा में आना ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना, और ऐसा बीच बीच में करना चाहिए, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या महीने में एक बार, एक दिन या 3 दिन, बीच बीच में मौन शिविर, स्व मौन शिविर, साइलेंस। वो वाला साइलेंस नहीं जिसका बैच तो लगा रहता है और सारी बातें चालू रहती है इशारों में से, वो वाला नहीं। आर्य मौन, पूर्ण मौन, आई कांटेक्ट भी नहीं, ओम शांति भी नहीं, वो होता है पूर्ण मौन, आर्य मौन। वो कभी कभी, मे बी 6 मास में 3 दिन, बीच बीच में जब समय मिले, अपनी सेवा देखते हुए छुट्टी लेकर बाबा कहते हैं ना भगत बीच बीच में कोठरी में चले जाते हैं तपस्या करने, उस टाइप का ये स्वसाधना है। बाकी दिन भर में बोलना तो है, ऐसा नहीं कि बोलना बंद कर दे, परंतु बोलते हुए भी मौन, मौन के केंद्र में अंतर्मुखी होकर बाह्य मुक्ता में आना अव्यक्त महावाक्य है। बाह्य मुखी कैसे बनो, अंतर दोनों का बैलेंस, दोनों को स्वाद लेना है, इसको भी टेस्ट करना है उसको भी टेस्ट करना है, ये भी जरूरी है, बाह्य मुक्ता भी बहुत जरूरी है। और बाह्य मुक्ता क्यों जरूरी है इसकी पॉइंट्स आज लिखनी है। कौन सी पॉइंट्स लिखनी है? बाह्य मुक्ता क्यों जरूरी है? क्योंकि बाह्य मुक्ता के विषय में हमारे मन में निगेटिविटी है कि ये होना नहीं चाहिए, पर हम हो रहे हैं, उसके लिए गिल्ट कॉन्शियसनेस भी है, अपराध भाव निरंतर, पर यह भी आवश्यक है और ये भी आवश्यक है, दोनों का बैलेंस। और धीरे धीरे एक समय आएगा फिर हम बाह्य मुक्ता से निकलते धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाए, परंतु वर्तमान में दोनों जरूरी है। तो बोलना, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलना अर्थात वो बोलना नहीं, यहां भाषण जब कर रहे हैं वो बोलना, वो वाला नहीं, दिन भर का भाषण और माइक सामने आ गया तो हर एक महान आत्मा योगी तपस्वी बन जाता है। माइक के सामने नहीं, दिन भर में जो सामान्य बातचीत है, दिन भर की जो बातें हैं वो सब, उसमें क्या बोला जा रहा है, तो बोलना। उसके बाद अगला खाना, ईटिंग। ईटिंग के पांच नियम बताए हैं, कौन से? मौन में, एकांत में, सतत दृष्टि देते हुए, धीरे धीरे, और संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। ये नियम तो हमेशा के लिए है, पांच, 5S। अगर टूट रहा है तो फिर उसे साधो, फिर धारण करो, भोजन एक तपस्या बन जाए। और इसके विषय में आगे चर्चा हम करेंगे। तो 18 तारीख तक ये सोमान वाली सीरीज चलेगी और 20 तारीख से 7 तारीख तक 20 दिन तक प्रश्न उत्तर चलेंगे, और उसके बाद जो अंतिम 21 दिन है वो प्राणिक इनिशिएशन होगा, वो प्राणा इंस्टॉलेशन, प्राणिक भट्टी का अंत जो है, 21 दिनों की भट्टी है वो, लास्ट 21 डेज। उसके पहले 20 दिन प्रश्न उत्तर होंगे, एक एक जो हजारों कितने सारे प्रश्न आ गए, रोज 25-30 जो मन चाहे वो लिख के भेज रहे लोग परंतु एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर यहां लेंगे, 20 दिनों तक केवल प्रश्न उत्तर, प्राणिक यात्रा, प्राणिक लिविंग, प्राणिक ये जो जीवन है ये क्या है, ये फास्टिंग का जीवन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भोजन छोड़ दो, ये वाला जीवन नहीं है, ये दुख वाला जीवन नहीं है, वेट लॉस करने का जीवन नहीं है, रसाहार का जीवन नहीं है, कुछ और है। वो क्या है उसका स्पष्टीकरण उन 20 दिनों में होगा, 19 तारीख से 7 तारीख तक, और 8 तारीख से फिर 28 फरवरी तक 21 दिनों की एक विशेष भट्टी होगी, 21 घंटे वाली भट्टी के अंदर भट्टी। तो खाना, इसकी ज्यादा चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी इसको यहीं छोड़ रहे हैं। अगला स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श के साथ हमारी बहुत ही यादें जुड़ी हुई है। स्पर्श के साथ क्या जुड़ा हुआ है? यादें जुड़ी हुई है। कामुक स्पर्श भी होता है तो शुद्ध स्पर्श भी होता है, माँ का भी स्पर्श होता है अपने शिशु को, बच्चे को, प्रेम का स्पर्श, एक डॉक्टर का भी स्पर्श होता है पेशेंट को, पर उसमें शुद्ध भावना होती है, और एक कामुक पुरुष का भी स्पर्श होता है, ये सब अलग अलग स्पर्श है, कैटेगरीज अलग अलग है। तो हमारा स्पर्श कैसा हो यह है प्रश्न, कैसा हो? प्योर, कैसा हो? पवित्र हो, और कैसा हो? वात्सल्यपूर्ण हो, और कैसा हो? कम से कम हो, जहां आवश्यकता हो वहीं, जहां अवॉइड किया जा सके वहां अवॉइड किया जाए, और हाँ वही हो ही ना, नो कांटेक्ट, नो टच थेरेपी, टच करना ही नहीं है, क्योंकि टच से ही सारी वासनाएं जागती है, वो एक संस्कार के साथ बहुत सारे संस्कार जुड़े हुए हैं। और स्पर्श कैसा हो अगर करना पड़े तो? आत्मिक दृष्टि के साथ, और कल्याण की दृष्टि के साथ। कोई अगर पड़ा हुआ है, नीचे गिर गया है, हम कहेंगे नहीं, हम तो हाथ नहीं लगाते, हम महाब्रह्मचारी है, मरने दो हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा हमारी लिस्ट में ही नहीं हाँ तो ये ऐसे तो होता है, कोई गिर रहा है, कोई फिसल रहा है, कोई मर रहा है, और हम कहें हम तो ब्रह्मचारी है। कल्याण का स्पर्श, कल्याणकारी स्पर्श हो, भक्ति मार्ग में स्पर्श को स्पर्श दीक्षा कहा जाता है। स्पर्श से क्या करते थे, हम अपने स्पर्श से अपनी एनर्जी को दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी शक्तियां दूसरों में ट्रांसफर। तीन प्रकार की दीक्षा है, नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा। मंत्र अर्थात कानों में मंत्र फूंकता है गुरु, स्पर्श अर्थात स्पर्श कर देता है और अपनी सारी एनर्जीज उसको दे देता है दादी प्रकाशमणि, वो है स्पर्श दीक्षा। और एक है नयन दीक्षा, केवल दृष्टि मात्र से ही सारी शक्तियां ट्रांसफर कर देना। और स्पर्श के लिए बाबा ने क्या कहा, ये शरीर क्या है, सांप, इस सांप को स्पर्श करना अर्थात डैश 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 क्या है, महा महा महा। किससे स्पर्श करना, हाथ से नहीं, नजर से स्पर्श करना, अर्थात महा महा महापाप है। की कामाई चट, कितने भारी भारी महावाक्य है। हाथ से तो बात ही नहीं चल रही है, किससे स्पर्श करना, आंखों से, नजर से। इसके लिए और टच हमारा कैसा हो, निर्विकारी टच हो, कैसा टच हो, बहुत ही कल्याण की भावना वाला, मदद करने वाला, उत्साह देने वाला। कई बार टच जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टचिंग हगिंग, ये क्या करता है व्यक्ति में, धैर्य भरता है, इनका बहुत साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। कोई व्यक्ति उदास है, दुखी है, उसके हाथ पकड़ लो, बस उसे एकदम सहारा मिल जाता है, शक्ति आ जाती है उसमें। इसके लिए ये जो ये थेरेपीज में इंक्लूड किया जाता है, भारत में एक हगिंग सेंट है, किसको पता है, साउथ इंडियन वालों को पता होगा, हगिंग सेंट, हगिंग अम्मा, माता अमृतानंद में। क्या करती है वो, बचपन से उसने पिछले 35-30 सालों में 330 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को हक किया है। क्या करती, उसकी एक ही टेक्निक है, लोग उसके पास अपने दुख दर्द लेके आते हैं, वो सबको केवल हक करती है। और उसको पूछा गया, ये सब कब से चालू किया आपने, वो कहता है जब मैं बहुत छोटी थी ना तभी से चालू हो गया ये, और तब से मुझे ये भान ही नहीं है कोई स्त्री है पुरुष है, मुझे दिखता ही नहीं है, बस मेरे अंदर प्रेम है और वो प्रेम मुझे बांटना है, बस यही भाव रहता है, प्रेम प्रेम प्रेम। माता अमृतानंद में देखा होगा इनको, हगिंग अम्मा, अम्मा मम्मा कहते हैं इनको, हगिंग अम्मा। इनके आश्रम में एक बार एक विदेशी स्त्री आई, जैसे यहां पर भी फॉरेनर्स आने लगे तो वैसे बाकी वे भी आश्रम है वहां पर भी धीरे धीरे फैलते हैं, फिर फॉरेनर्स आते। वो फॉरेनर स्त्री बहुत दुखी थी, उसके जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी हुई थी, ट्रॉमा हुआ था। वो वहां बैठी अम्मा अम्मा के सामने, और एक अम्मा की विशेषता ये है, वो अपना नाम कभी भी मैं करके नहीं कहती। यदि दादी कैसी कहती थी ना, दादी, दादी को लगता है, वैसे अम्मा जो है ये थर्ड पर्सन में बात करती है हमेशा, अम्मा को लगता है ऐसा, वो उनकी भाषा में बात करती है परंतु मैं शब्द का प्रयोग कभी नहीं करती है, और वो बहुत सहज दिखता है, इसलिए लोग इतने पागल हो जाते हैं उसके पास, निरंकारिता की मूर्ति। तो वो स्त्री वहाँ बैठी थी, अम्मा से मिलने आई, और पहले दिन मिली उदास, दूसरे दिन मिली उदास, रोज मिल रही है अम्मा उसको, हक कर रही है, फिर भी वो उदास। फिर अम्मा उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो, वो कहती है मैं उदास इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारे आपके पास जो दूसरी स्त्री बैठी है ना एकदम बाजू में, वो भी वहीं से है जहां से मैं हूं, और ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, यहां तक कि इसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी है, और मुझे ये देख के दुख हो रहा है कि जो मेरा जो इस व्यक्ति में इतनी बुराइयां है उसको आप प्यार करती हो, ये मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है, पर बताऊं कैसे, हमारा दुश्मन हमारे हम जिसको बहुत मानते हैं वो उसको प्यार कर रहा है। तो अम्मा उसको एक चीज कहती है, जिस चीज के कारण आश्रम के जो दूसरे लोग हैं ना थोड़े से उदास हो जाते हैं, अम्मा कहती है जो लोग ज्यादा सीरियस होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है, आईसीयू में, जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, आईसीयू में, और जो नॉर्मल है उनको वार्ड में रखते हैं, पल्स बीपी सब ठीक चल रहा है, सैचुरेशन सब ठीक है, जो क्रिटिकल है जिनका 24 आवर्स मॉनिटरिंग की आवश्यकता है उनको यहाँ। इसलिए ये जो आश्रम में भी जो रह रहे हैं वो आईसीयू वाले हैं और जो दूर रहते हैं उधर सेंटरों में वो वार्ड है, वो स्टेबल है। तो उस बहन को थोड़ी राहत मिलती है कि मैं आईसीयू में नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसी स्पेशल केयर जरूरत नहीं है, मैं स्टेबल हूँ। परंतु वो जो आश्रम निवासी होते, अब वो सारे अम्मा के पास आ जाते, अम्मा आप कहती हो हम आईसीयू में? तो अम्मा कहती है ऐसा नहीं, मैंने उसको केवल सांत्वना देने के लिए बात कही थी। चुल पर जो दिल पर, हाँ। और उनको, और कुछ अर्थों में बात सही भी है, पर क्योंकि ये वाले अगर बाहर रहे तो शायद बाहर वाले कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, शायद आईसीयू की ही आवश्यकता है, ऐसे चुने हुए हैं सभी। इसलिए टच क्या है, थेरेपी है, एक जहां आवश्यक है वहां आवश्यक है टच। अगला, उसके बाद मन बुद्धि और संस्कार, मन को वश में करना, ये मेंटल रिप्रोग्रामिंग की बात है। उसको वश में करने की सबसे सहज विधि है उसको बिजी कर देना, ज्ञान योग धारणा सेवा में कल भी हमने देखा था, उसको बिजी करने, उसको वश में करने की विधि है उसको एक लक्ष्य दे देना, उसको उस परम में लगा देना, मन मना भाव कर देना उसको। और एक दूसरी टेक्निक आज बता रहे वो है निगेटिव एसोसिएशन, जो चीज हमें नहीं करनी है उसके साथ क्या करना है, निगेटिव एसोसिएशन करना है। अर्थात एक अपने आप में टेक्निक है साइकोलॉजी में निगेटिव एसोसिएशन, अर्थात जब जब मैं उस व्यक्ति से मिलता हूं तो उसको वो दुखी होता है और मैं भी दुखी होता हूं, पर वो मिलना बंद नहीं होता है। अब क्या करें, अब एक मेंटल एसोसिएशन क्रिएट करना है, मिलना और दुख इसको जोड़ दो, जैसे कोई व्यक्ति है अवर्शन थेरेपी है, सिगरेट 40 साल से छूट नहीं रही है, क्या करे, तो वो एक उसके प्रति नफरत क्रिएट करेगा, एक निगेटिव एसोसिएशन, क्योंकि वो मैं पीऊंगा ना तो फिर मुझे ये तकलीफ होगी, बस उसके साथ तकलीफ को जोड़ दिया। इसलिए पावलोफ जो था उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो ऐसे रोगी थे और जैसे उनको इच्छा होती थी वो सिगरेट जो थी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जोड़ दिया था, उसने सिगरेट लिया इलेक्ट्रिक करंट लगा, फिर बैठो अभी शांत थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर में इच्छा हुई सिगरेट पीनी है, हाथ बढ़ा फिर से करंट लगा, अब सिगरेट और इलेक्ट्रिक करंट जुड़ गए, अब इलेक्ट्रिक करंट नहीं लग रहा है फिर भी हाथ नहीं लगाता है, क्यों, क्योंकि माइंड में एक रिवायरिंग हो गई है, इसके साथ वो जुड़ा हुआ है, दुख जुड़ा हुआ है। उसी तरह विकार में गए कि दुख आता ही है, नहीं गए तो बेचैनी होती है और गए तो दुख आता है, पश्चाताप होता है, क्या चाहिए तुमको, बेचैनी ठीक है परंतु दुख ना खाए तो इच्छा होती है, बेचैनी होती है कब खाऊं कब खाऊं, और खा लिया तो फिर पश्चाताप होता है, दोनों तरफ धोखा है। पर ज्यादा धोखा किधर है, खाकर पश्चाताप करने में, ना खा के बेचैनी ठीक है, वो बेचैनी सेट हो सकती है, चेंज कर दो थोड़ी देर में अनित्य वो चली जाएगी, डोंट सकम। तो निगेटिव एसोसिएशन क्रिएट करना है माइंड को वश में करने के लिए। अगला है बुद्धि, बुद्धि का स्वरूप क्या है, आज सुबह का साकार मुरली महावाक्य क्या है, मीठे बच्चे टीचर सुबह के महावाक्य, आज के महावाक्य, बुद्धि रिफाइंड कैसे होगी, ज्ञान सुनाने से बुद्धि क्या होगी, ज्ञान बुद्धि में रिफाइंड होते जाएगा। पीछे से फोर्स भर रहे सकाश आ रही है। तो बुद्धि को क्या करना है, बिजी रखना है, नई नई स्किल सीखनी है हर दिन, जो नहीं सीखा वो सीखो, स्विमिंग सीखो, स्केटिंग सीखो, ड्राइविंग सीखो, टाइपिंग सीखो, सारी नई स्किल्स यज्ञ में यूज होगा उसका, बुद्धि को उसमें बिजी कर दो। और फिर है संस्कार, ये सबसे कड़ा काम है, क्योंकि संस्कार ऑटोमेटिक हैबिट बन चुके हैं, उनको बदलना इतना आसान नहीं है, नई आदतें निर्माण करनी पड़ेगी। जो आदतें बन गई है उनको अब वहाँ से हटा के नई आदतें, क्योंकि हम आदतों के वश हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन वश में, बुद्धि वश में, संस्कार वश में। संस्कार को वश में तो करना बात की बात है, पहले उनको समझना है ये हैबिट पैटर्न क्रिएट हो गया है खाने का, पीने का, सोने का, बोलने का, ये संस्कार बन गया है एक, अब इसको बदलना है। पहले उसको समझो ये ऐसा बना है और किस तरह बनाना है उसको, ये नेक्स्ट स्टेप है। उसका क्लियर कट एक हमारे पास प्रोग्राम हो, ऐसा बनाना है उसको। तो मैं आत्मा राजा मन बुद्धि और संस्कारों सहित स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इन अलग अलग स्वमानों का अभ्यास करते रहना है। तो ये थी आठ बातें। पहला बताया देखना, देखने को क्या करना है, दिव्य बना देना है, आत्मिक बना देना है। दूसरा सुनना, सुनना कैसे करना है, प्रभु वचन जो है वो सुनने के लिए लालायित हो। तीसरा बोलना, तो उसके लिए होमवर्क दिया है आज, हमारे बोल कैसे हो, 21 पॉइंट। अगला खाना, किस स्थिति में खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन खा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। खाते समय क्या याद करना है, कौन खा रहा है, मैं कौन, ये महत्वपूर्ण है। अगला स्पर्श, स्पर्श कैसा हो उसके ऊपर चिंतन करना है। अगला मन बुद्धि और संस्कार, मन का काम है, मन चंचल है, बुद्धि भटकती है, उनको स्थिर करना। अगला लास्ट संस्कार, तो संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन, वर्ण जाति सांप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, छोटे छोटे संकल्प करने जिससे मन परिवर्तन हो जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। ओम शांति।
जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। Thank you. हरी भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध के लिए नियोजित, शुद्ध साध के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन।